जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है तो उसके स्वप्न में दूसरा आदमी प्रविष्ट नहीं होता है, उसके स्वप्न में दूसरा आदमी तब प्रविष्ट होता है जब दोनों के सुने हुए संस्कार एक जैसे हों। ठीक मूर्ख आदमियों के साथ हम लोग जीते हैं, संसार के दलदल में फंसे हुए, पैसों के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, लोगों के बीच यदि साधक भी जाता है तो साधक भी सोचता कि चलो थोड़ी उघरणी तो कर लिए, थोड़ी थप्पी तो बनाई ले, कारण के मारा डोहा ना डोहा ले गया छे, डोहाए ले गया छे, मारे हवे ले जावानी छे थप्पियो, श्री राम। तो मोह के दलदल में आदमी फंस जाता है। कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति के साथ यदि तुम तादात्म्य करते हो तो तुम्हारा तुम क्या, ये तो अपने नहीं डूबेंगे, ये डूबे हुए हैं, अपने नहीं डूबेंगे, अपने नहीं डूबेंगे कहते भी जाते हो, डूबते भी जाते हैं, क्योंकि बुद्धि में एक ऐसा विचित्र भ्रम हो जाता है। ऐसा भ्रम जैसा तैसे साधक को तो नहीं, अर्जुन जैसे को हो गया। अर्जुन को साक्षात्कार नहीं हुआ और अर्जुन बोलता कि भगवान तुम्हारी प्रसाद से मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। कृष्ण बोलते अच्छा ठीक है, समझ रहा है तभी भी दुखी सुखी होता है, मोह ममता है। 11वें अध्याय में कहा अर्जुन ने कि मेरे को ज्ञान हो गया है, मेरे को ज्ञान हो गया। 11वें अध्याय में उसको महसूस हुआ कि मैं सब समझ गया, अब मेरा मोह बो नष्ट हो गया। फिर होते होते 7 अध्याय और चले हैं, उसको पता ही नहीं कि साक्षात्कार क्या होता है। तो एक तुष्टि नाम की भूमिका आती है जो जीव का स्वभाव होता है। जीव में थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा हर्ष, थोड़ा सा सामर्थ्य आ जाता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। जरा सा आभास होता है, झलक आती है, उसी को लोग साक्षात्कार मान लेते हैं। बुद्धिर्व्यति तरिष्यति ही तदा गतासि निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतस्य च। जब मोह सलील को बुद्धि पार हो जाएगी तब तुमने सुना हुआ और देखा हुआ उस सब से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। इंद्र आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कुबेर तुम्हारे लिए खजाने की चाबियां हाथ में लिए हुए खड़ा हो, ब्रह्मा जी करमंडलो हाथ में धरे हुए खड़ा हो कि चलिए ब्रह्मपुरी का सुख भोगिए, फिर भी तुम्हारे चित्त में उन पदार्थों का आकर्षण नहीं होगा तब समझ लेना कि साक्षात्कार हो गया। बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, किसी सूफी फकीर का वचन है। बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहां जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया। जीव का स्वभाव है भोग, शिव का स्वभाव भोग नहीं है। जीव का स्वभाव है भोग, जीव का स्वभाव है वासना, जीव का स्वभाव है सुख के लिए दौड़ना। ब्रह्मा जी आएंगे तो सुख देने की तो बात करेंगे ना, तो सुख के लिए यदि आप भागते हैं तो पता चल गया कि सुख का दरिया अभी तुम्हारे हृदय में पूरा उमड़ा नहीं है। सुख की कमी होगी तब आप कहीं सुख लेने को जाएंगे। तो सुख लेना जीव का स्वभाव होता है, साक्षात्कार के बाद जीव बाधित हो जाता है, जीव नहीं रहता है, जीव का जीवपना उड़ जाता है और वो शिवत्व में प्रकट होता है। जैसे कामदेव कितने भी नखरे करने लगा रति के साथ, शिव जी को प्रभावित न कर सका, क्योंकि शिव इतने आत्मरामी हैं, शिव के अंदर इतना आत्मानंद है कि काम का सुख अति तुच्छ है, अति नीचा है। तो शिव इम्प्रेस नहीं हुए, शिव प्रभावित नहीं हुए। योगी लोग, संत लोग जब साधना करते हैं तो अप्सराएं आती है, नखरे करती है, तो जो अप्सराओं के नखरों में आक्रांत हो जाते हैं वे आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते हैं, वे आत्मा के खजाने को नहीं पा सकते। उसी लिए साधकों को चेतावनी दी जाती है कि किसी रिद्धि सिद्धि में, किसी प्रलोभन में मत फंसना। आप मन का और इंद्रियों का थोड़ा संयम करेंगे तो तुम्हारी वाणी में सामर्थ्य आ जाएगा, तुम्हारे संकल्प में बल आ जाएगा, तुम्हारे द्वारा चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन चमत्कार होना ये साक्षात्कार नहीं है, चमत्कार होना शरीर और इंद्रियों के संयम का फल है। साक्षात्कार वाले के द्वारा भी चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार वाले महापुरुष चमत्कार करते नहीं है, हो जाते हैं, और हो भी गए तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। जैसे कबीर के द्वारा कुछ हो गया, नानक के द्वारा कुछ हो गया, शंकराचार्य के द्वारा कुछ हो गया, लीलाशाह बापू के द्वारा कुछ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे कि बापू ने ऐसा कर दिया, बापू ने ऐसा कर दिया, और होता था कि हम ऐसे कैसे बनेंगे, जैसा बापू में सामर्थ्य ऐसा हम में कब आएगा। बाद में पता चला कि अरे ये सामर्थ्य भी इच्छा शक्ति का एक हिस्सा ही है। जो तुम संकल्प करते हो उस संकल्प को तुम डटे रहो, जो तुम एक विचार करते हो उस विचार को काटने का विचार न उठने दो तो तुम्हारे विचार में बल आ जाएगा। तुम्हारा विचार हुआ अमुक आदमी के बारे में तुमने सुना कि फलाना मित्र बीमार है, अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध दो किस्म से होता है, शरीर को इंद्रियों को संयत करके तुमने जप तप मौन एकाग्रता की तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। लेकिन ये आखिरी नहीं है, शुद्ध अंतःकरण अशुद्ध भी हो सकता है। हृदय आपका स्थिर है तो दूसरे की चित्त वृत्ति उनके साथ तादात्म्य हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपन लोगों को चमत्कार लगता है, संतों को कोई चमत्कार नहीं लगता है। तुम्हारा बुद्धि स्थिर है तो दूसरे के जो आंदोलन है, दूसरे के जो श्वास है, जैसे तुम्हारी मशीन के नंबर ठीक हैं तो टीवी के वेव्स झील लेगी, तुम्हारे रेडियो के बैंड अनुकूल है तो वेव्स का पता चल जाता है, गाना खबरें सब सुनाई पड़ता है। ऐसे तुम्हारा अंतःकरण यदि शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है तो घटित घटना या घट रही है वो घटना या घटने वाली घटना का पता चल जाता है। यही कारण है कि वाल्मीकि ऋषि ने 100 साल पहले रामायण रच लिया। कोई राम को या विष्णु को पूछने नहीं गए थे तुम क्या क्या करोगे, अथवा किसी को किसी ज्योतिष का हिसाब लगाने को नहीं गए थे। उनका बुद्धि इतना शुद्ध होता है कि भूत और भावी दोनों कल्पनाओं में नहीं रहती, वर्तमान में, और ज्ञानी के लिए सदा वर्तमान रहता है, इसलिए भूत भविष्य की खबर उनको पड़ जाती है, बुद्धि उनकी विचलित नहीं होती, चलित नहीं होती। तो एकाग्रता सब तपस्याओं का माई बाप है। भक्त परंपरा के माध्वाचार्य, पूज्यपाद माध्वाचार्य भक्त परंपरा में प्रसिद्ध संत हो गए, आचार्य हो गए। माध्वाचार्य ने कहा कि हे प्रभु, हम तेरे प्यार में अब इतने मोह हो गए कि अब हमसे न यज्ञ होता है, न तीर्थ होता है, न तर्पण होती है, न संध्या होती है, न मृगशाला बिछती है, न माला घूमती है, अब तो हम तेरे प्यार में ही बिक गए। तो जब प्रेमा भक्ति प्रकट होने लगती है और संसार का मोह, कुटुंबियों का, समाज का तो मोह हट जाता है, लेकिन फिर ये कर्मकांड का मोह भी टूट जाता है। कर्मकांड का मोह तब तक है जब तक देह में आत्मबुद्धि है, जब तक संसार में आसक्ति तब तक कर्मकांड में प्रीति। संसार की आसक्ति हट जाए, कृष्ण में प्रेम हो जाए, कृष्ण का अर्थ है आत्मा, राम का अर्थ है जो रम रहा है सब में चेतन, उस परमात्मा में यदि प्रेम हो जाए तो फिर कर्मकांड की नीची साधना करने को जी नहीं करता है। एकाग्रता तो ठीक है, लेकिन एकाग्रता का उपयोग यदि संसार है, एकाग्रता का उपयोग यदि भोग है, तो वह एकाग्रता मार डालती है। एकाग्रता का उपयोग परमात्मा एक है उसमें होना चाहिए। रुपया तो है, रुपया कोई पाप नहीं, लेकिन रुपयों से भोग भोगना पाप है। सत्ता कोई पाप नहीं, लेकिन सत्ता से अहंकार बढ़ाना पाप है। अकल होना कोई पाप नहीं, लेकिन अकल से दूसरों को गिराना और अपने को अहंकार से पोषित करना ये पाप है। जो कुछ चीजें हैं, कई लोग परेशान हैं, अधार्मिक लोग तो दुखी रहते हैं, मूढ़ लोग, पामर लोग तो परेशान हैं, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन भगत भी परेशान है। भगत को ऐसा है कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरी इंद्रियां स्थिर हो जाए। भैया, मन शांत हो जाएगा, इंद्रियां स्थिर हो जाएगी तो फिर राम राम सत ही हो जाएगा। मन और तन का तो स्वभाव है हरकत करना, मन और तन का स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव है चेष्टा करना, लेकिन सुयोग्य चेष्टा हो। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, लेकिन संकल्प ऐसे करे कि जिस संकल्पों से इसके बंधन कटे। बुद्धि का स्वभाव है निर्णय अनिर्णय करना। लोग बोलते हैं मैं शांत हो जाऊं, पत्थर की तरह मेरा ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए। जिनका ध्यान लगता है वे भी परेशान है, और जिनका ध्यान नहीं लगता है वे भी परेशान है। जो ध्यान के रास्ते पर नहीं आए वो तो परेशान है, क्योंकि पल पल में वृत्तियां उद्विग्न होती है, रजो तमोगुण बढ़ जाता है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत ध्यान में रुचि और ध्यान नहीं लगता वे परेशान है, और जिनका थोड़ा बहुत लगता है वे भी परेशान है कि ज्यादा लगे। ज्यादा लगने को वो ऐसा समझते कि ऐसा ध्यान लगे कि बस अपने बैठे रहे, कोई पता ना चले, योग में बताया गया है चित्त की अवस्था होती है क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध और एकाग्र। तो सदा एकाग्र चित्त नहीं रह सकता क्योंकि चित्त भी प्रकृति का बना है। सदा निरुद्ध भी नहीं रह सकता है, सदा मूढ़ भी नहीं रह सकता है, सदा विक्षिप्त भी नहीं रह सकता है, सदा एकाग्र भी नहीं रह सकता और सदा चंचल भी नहीं रह सकता। कितना भी चंचल व्यक्ति रात को देखो शांत हो जाएगा, कितना भी शांत व्यक्ति देखो तो उसे चेष्टा करेगी। भगवान शंकर जैसी समाधि तो किसी की लगी नहीं, फिर भी शंकर उठते हैं तो डमरू लेके नाचते हैं। इतने दिन जो बैठे थे तो नहीं हिले चिले थे, वो सब कसर निकाल देते हैं। इतने दिन समाधि में थे, नहीं हिले जुले थे तो डमरू लेके नाचे और सब बैठने के जो दिन बीत गए उनकी कसर निकाल देते। तो शरीर मन और संसार ये सब चीजें बदलने वाली है, एक जैसी नहीं रहेगी। तो जो आदमी ध्यान में समाधि में एक जैसा रहना चाहता है अथवा जो दुख में या सुख में पकड़ जिसकी है, तो दुख में तो पकड़ ज्यादा नहीं होती, सुख में पकड़ होती है। इसीलिए पकड़ होती है कि बुद्धि का मोह नहीं गया। तो सुख में यदि पकड़ है, धन में यदि पकड़ है, स्वर्ग में यदि पकड़ है, तो समझो कि बुद्धि का मोह चालू है। ज्ञानी की पकड़ कहीं नहीं होती, इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति। मोह कलिल से मोह दलदल है, दलदल में आदमी थोड़ा सा फंसता है फिर थोड़ा 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 करते करते पूरा नाश हो जाता है। पीत्वा मोहमय मदिरा संसार भूत्वा उन्मतः। तो कहने का तात्पर्य कि दुर्जन तो दुखी होते ही हैं, लेकिन सज्जन लोग भी परेशान रहते हैं। एक पिता फरियाद करता है मैं सवेरे उठता हूँ, मेरे कुटुंब के लोग सवेरे उठते, लेकिन नौजवान लड़का जो मेरा है बड़ा वो दुष्ट है, मोह सवेरे नहीं उठता है। तो ये मोह है कि मेरा बेटा है उसलिए सवेरे उठे, कईयों के बेटे नहीं उठते तो दुख नहीं होता, लेकिन मेरा बेटा है तो मैं जैसा धार्मिक हूं ऐसा बेटा धार्मिक होना चाहिए। तो अपने बेटे में इतनी ममता होने के कारण तो दुख होता है। तो भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो भगवान तत्व तो कुछ समझ बैठे, उनको कोई आग्रह नहीं होता है। वो बड़े बेटे को जल्दी उठाने में प्रयत्न करते हैं लेकिन नहीं उठता है तो चित्त में विक्षिप्त नहीं होते। धातु को ने ध्यान से तो तेनु प्रारब्ध ते वोशे। किसी का विरक्तता का प्रधानता का प्रारब्ध होता है, किसी का ध्यान प्रधान प्रारब्ध होता है, किसी का व्यवहार प्रधान प्रारब्ध होता है, किसी का मौन प्रधान प्रारब्ध होता है। तो ज्ञान होने के बाद कोई ध्यान करता है तो धातु को ने ध्यान से तो तेनु प्रारब्ध ते वोशे। लेकिन धार्मिक लोगों को इतनी चिंता परेशानी रहती है कि अरे सुखदेव जी को तो लंगोटी का पता नहीं चलता था, अब हमारे ध्यान लगता है तो हमारे को तो ऐसा होता है सुखदेव जी जैसा ध्यान लगे। लेकिन हजारों वर्ष पहले का मनुष्य, हजारों वर्ष पहले का वातावरण और कई जन्मों के संस्कार थे, उनका ऐसा हुआ। अब उनको लक्ष्य बनाकर तुम चलते तो जाओ लेकिन अंदर से विक्षिप्त तो नहीं होना, नहीं होता है तो नहीं होता, लेकिन चित्त को तुम प्रसाद से पूर्ण रखो, हो गया तो भी स्वप्न और न हुआ तो भी स्वप्न। जिस परमात्मा में सुखदेव जी होके चले गए, वशिष्ठ होकर चले गए, राम आकर चले गए, वो परमात्मा अभी तुम्हारा आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मोह नहीं जाता है।